एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिनका नाम लेते ही मुझे लगता है सामाजिक न्याय, बराबरी और हाँ, भारतीय संविधान, ये सब जहन में आता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। लेकिन सिर्फ संविधान निर्माता कहना शायद शायद उनके काम को सीमित कर देता है ना?
बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक समाज सुधारक थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, कानून के जानकार और सबसे बढ़कर करोड़ों शोषितों की, दबे कुचलों की आवाज थे। उनकी सोच, उनका संघर्ष, उसने हमारे लोकतंत्र की सिर्फ शक्ल नहीं बनाई बल्कि उसकी आत्मा को भी गढ़ा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि अंबेडकर के विचार कैसे पनपे, उनका असर क्या हुआ और आज भी वो इतने प्रासंगिक क्यों हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। हमारे पास उनके जीवन और काम पर आधारित कुछ स्रोत हैं जिनमें गुजराती पुस्तकों के अंश भी शामिल हैं। अच्छा, सबसे पहले उस दौर को समझना जरूरी है ना? वो समय कैसा था जब डॉक्टर अंबेडकर सोच रहे थे, लिख रहे थे, लड़ रहे थे?
हाँ बिल्कुल, वो दौर आप देखिए बड़ी उथल पुथल का समय था। एक तरफ तो भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी, ब्रिटिश राज बस खत्म होने ही वाला था, और दूसरी तरफ समाज के अंदर जाति व्यवस्था जैसी हजारों साल पुरानी बेड़ियां थीं, बहुत गहरी जड़ें थीं उनकी।
और हवा में बड़े बड़े आइडियाज थे, राष्ट्रवाद, समाज सुधार, लोकतंत्र।
हाँ, लेकिन जमीनी हकीकत वो बहुत अलग थी, बहुत क्रूर थी कई मायनों में।
और इसी माहौल में अंबेडकर जैसे विचारक किए ये बुनियादी सवाल उठा रहे थे कि क्या सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी है? क्या बस अंग्रेज चले जाएंगे तो समाज में अपने आप बराबरी आ जाएगी?
बिल्कुल, और यहीं पर उनका सीधा टकराव हुआ उस सोच से जो कहती थी कि भाई पहले आजादी ले लो, समाज सुधार बाद में देख लेंगे।
यही पर गांधी, नेहरू जैसे बड़े नेताओं से उनके मतभेद उभरकर सामने आए, है ना?
हाँ बिल्कुल, गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता पहली जरूरत है और सामाजिक बुराइयां जैसे छुआछूत है, उसे हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही मतलब सुधारा जा सकता है, शायद वर्ण व्यवस्था को एक नए तरीके से देखकर।
उसे सुधार कर।
हाँ, लेकिन अंबेडकर के लिए, उनके लिए सामाजिक गुलामी जो जाति व्यवस्था से आती थी, वो राजनीतिक गुलामी से कहीं ज्यादा ज्यादा भयानक थी। उनका साफ मानना था कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, तब तक सच्ची आजादी का कोई मतलब ही नहीं है।
ये तो सोच में बहुत ही बुनियादी फर्क था।
हाँ,
गांधी जी गांव को भारत की आत्मा मानते थे और अंबेडकर वो तो उसे अज्ञान और संकीर्णता का गढ़ कहते थे।
बिल्कुल, जहां जाति का दमन सबसे ज्यादा महसूस होता है। और उनके इन विचारों पर देखिए ज्योतिराव फूले जैसे समाज सुधारकों का बहुत गहरा असर था। फूले ने उनसे पहले ही जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर बहुत तीखे सवाल उठाए थे।
अच्छा, और विदेश में जो उन्होंने पढ़ाई की, इसका भी बड़ा रोल रहा होगा?
हाँ बहुत बड़ा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉन डेवी जैसे प्रोफेसरों से पढ़ना, पश्चिम का लोकतंत्र, तर्कवाद, इन सबको समझना, इन सब ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि देखो शिक्षा और संविधान यही असली औजार हैं जिनसे समाज बदल सकता है। और वो दुनिया भर में जो उस वक्त सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे, मजदूर आंदोलन चल रहे थे, उनसे भी प्रेरणा ले रहे थे।
उनकी शुरुआती जीवन को अगर देखें तो वो एक असाधारण संघर्ष और उतनी ही असाधारण प्रतिभा की कहानी है। 14 अप्रैल 1891 को जन्म महार जाति में, जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था।
हाँ, बचपन से ही कदम कदम पर भेदभाव, अपमान, आप सोचिए स्कूल में अलग बैठाया जाना,
पानी तक को तरसना,
हाँ ये सब उनके रोजमर्रा के अनुभव थे।
लेकिन ऐसी पृष्ठभूमि से आकर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ना, कोलंबिया लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स,
और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल करना, ये उनके पिता की फौज की नौकरी से जो शुरुआती मौके मिले और उनकी अपनी जबरदस्त लगन और प्रतिभा, उसी का नतीजा था। वो अपने समुदाय से शायद पहले व्यक्ति थे जो इतनी ऊंची शिक्षा तक पहुंचे।
और ये डिग्रियां सिर्फ अकादमिक नहीं थी, है ना? ये उनके लिए हथियार बनी।
बिल्कुल, सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का हथियार। विदेश में उन्होंने देखा कि बिना जाति पाति वाला समाज कैसा होता है, और भारत लौटकर उसे बदलने का उनका इरादा और पक्का हो गया।
उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उनके संघर्ष की दिशा ही बदल दी, जैसे 1927 का महाड़ सत्याग्रह।
हाँ, महाड़। वो सिर्फ एक तालाब से पानी लेने की लड़ाई नहीं थी।
नहीं,
वो एक ऐलान था कि दलित भी इंसान हैं और उनके भी बराबर के नागरिक अधिकार हैं।
बिल्कुल। और फिर वो गोलमेज सम्मेलन लंदन में।
हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। वहां उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब ये कि दलित अपना नेता खुद चुने सिर्फ दलितों के वोटों से।
गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे।
बहुत सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। लेकिन अंबेडकर के लिए ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल था, अपने समुदाय की आवाज को ताकत देने का सवाल था।
ये टकराव दिखाता है कि सामाजिक न्याय के लिए वो राजनीतिक अधिकारों को कितना जरूरी मानते थे।
हाँ, कितना अहम। अच्छा, अब उनके करियर के सबसे बड़े पड़ाव पर आते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण।
हाँ, यकीनन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उन्होंने एक ऐसे दस्तावेज को गढ़ने में सबसे अहम भूमिका निभाई जो करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद बना।
संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, खासकर छुआछूत का अंत करने वाला अनुच्छेद 17, बिल्कुल, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो सरकार को एक दिशा देते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए काम करना है, ये सब अम्बेडकर की सोच की गहरी छाप है।
और आरक्षण का प्रावधान।
हाँ, सकारात्मक कार्रवाई जिसे कहते हैं, एफर्मेटिव एक्शन, ये भी उसी सोच का नतीजा था कि जो समुदाय सदियों से पीछे धकेल दिए गए हैं उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होंगे। इसी को संविधानवाद कहते हैं, मतलब कानून के राज और संवैधानिक गारंटी के जरिए सामाजिक बदलाव लाना।
वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने।
जी हाँ।
लेकिन जब उनका वो प्रगतिशील हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया
जो महिलाओं को संपत्ति और विवाह पे बराबरी का हक दिलाता,
हाँ, तो उन्होंने 1951 में इस्तीफा दे दिया।
ये दिखाता है कि वो लैंगिक समानता को लेकर कितने कितने प्रतिबद्ध थे। सिद्धांतों के लिए सत्ता भी छोड़ दी।
बिल्कुल।
सत्ता उनके लिए साधन थी, साध्य नहीं। और फिर आया उनके जीवन का शायद सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़, 1956 में।
बौद्ध धर्म अपनाना।
हाँ, अपनी मृत्यु से बस कुछ ही हफ्ते पहले नागपुर में लाखों लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया।
ये सिर्फ धर्म बदलना नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी जाति व्यवस्था का वैचारिक त्याग था जिसकी जड़ें वो मानते थे हिंदू धर्म की मान्यताओं में बहुत गहरी हैं। और उन्होंने बौद्ध धर्म का भी एक नया रूप चुना, नवयान, जो तर्क पर, नैतिकता पर और सामाजिक बराबरी पर जोर देता था।
उनके लेखन ने भी तो विचारों की दुनिया में जैसे एक क्रांति ला दी। उनकी किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश, वो तो आज भी एक घोषणा पत्र जैसी मानी जाती है।
बिल्कुल। वो असल में 1936 में लिखा गया एक भाषण था।
अच्छा।
हाँ, जिसे उन्हें देने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो इतना इतना रेडिकल माना गया, इतना क्रांतिकारी।
उसमें ऐसा क्या था?
उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो, जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, जैसा कि कई सुधारक भी मानते थे। ये तो श्रमिकों का विभाजन है। लोगों को जन्म के आधार पर ऊंच नीच के खांचों में हमेशा के लिए बांट देना। और उनका तर्क था कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसे जड़ से उखाड़ना होगा, इसका विनाश करना होगा।
ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी बात।
फिर उनकी मृत्यु के बाद एक और महत्वपूर्ण किताब छपी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा।
हाँ, बुद्ध और उनका धम्मा। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश किया।
किस तरह से?
उन्होंने बुद्ध को एक समाज सुधारक के रूप में देखा जिसने उस समय के ब्राह्मणवाद और कर्मकांडों को चुनौती दी थी। अम्बेडकर का जो बौद्ध धर्म था वो कोई अलौकिक या कर्मकांड वाला नहीं था, वो तर्क पर आधारित था, नैतिकता पर और सामाजिक एक्शन पर।
अच्छा।
समानता और करुणा, ये उसके मूल में थे और यही उनके नवयान आंदोलन का आधार बना।
हालांकि कुछ लोग आलोचना करते हैं इसकी।
हाँ, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बौद्ध धर्म की थोड़ी राजनीतिक व्याख्या है जो अम्बेडकर के अपने सामाजिक लक्ष्यों के हिसाब से है। लेकिन अंबेडकर के लिए धर्म वही था जो इंसान की गरिमा और बराबरी के काम आए। उनका वो प्रसिद्ध कथन है ना?
कौन सा?
धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए।
वाह, बहुत गहरी बात है।
जी।
उन्होंने इतिहास को भी चुनौती दी, हुआ द शूद्रास जैसी किताबों में।
हाँ, उन्होंने जो स्थापित मान्यताएं थी उनको पलटा, तर्क दिया कि शूद्र असल में क्षत्रिय थे जिन्हें सत्ता के संघर्ष में नीचे धकेल दिया गया। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये जो जाति व्यवस्था है, ये कोई प्राकृतिक या दैवीय चीज नहीं है, ये इंसानों की बनाई हुई है, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से बनी है।
अगर हम उनके दार्शनिक योगदान का सार देखें तो वो क्या होगा?
मुझे लगता है उसका सार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों में है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रिटर्निटी, ये फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, लेकिन अम्बेडकर ने इन्हें भारतीय संदर्भ में एक बहुत गहरा मतलब दिया। और शायद सबसे महत्वपूर्ण तर्क यही है कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र खोखला है।
क्या मतलब हुआ इसका?
मतलब अगर समाज में ही भाईचारा नहीं है, बराबरी नहीं है, ऊंच नीच है, तो सिर्फ वोट डालने का अधिकार मिल जाने से सच्ची डेमोक्रेसी नहीं आती, वो बेमानी है।
और इसीलिए उन्होंने कानून और संविधान पर इतना जोर दिया।
बिल्कुल, उन्हें लगता था कि ये जो सदियों पुरानी ऊंच नीच की व्यवस्था है, ये सिर्फ नैतिक अपील करने से नहीं मिटेगी, इसके लिए राज्य की ताकत चाहिए, कानूनी सुरक्षा चाहिए, एक गारंटी चाहिए।
अगर मार्क्स से उनकी तुलना करें तो?
मार्क्स भी तो बराबरी की बात करते थे।
हाँ, लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। मार्क्स ने सारी समस्या की जड़ आर्थिक मानी, वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल।
अम्बेडकर मानते थे कि भारत में जाति वो वर्ग से भी ज्यादा गहरी और ज्यादा ताकतवर चीज है। यहाँ का शोषण सिर्फ आर्थिक नहीं है।
अच्छा,
यहाँ सिर्फ आर्थिक क्रांति काफी नहीं होगी, यहाँ तो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति भी चाहिए। धर्म और परंपरा के ढांचे को भी बदलना होगा।
उनकी विरासत, वो तो आज भी जिंदा है और शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत।
हाँ बिल्कुल, करोड़ों लोग उन्हें बाबा साहेब कहकर पूछते हैं। दलित आंदोलन के तो वो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। कितने ही राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, साहित्यिक आंदोलन है जो उनके विचारों से, अम्बेडकरवाद से ऊर्जा लेते हैं।
ये भी दिलचस्प है कि आजादी के बाद एक समय तक शायद मुख्यधारा में उन्हें वो जगह नहीं मिली।
हाँ, कुछ हद तक हाशिए पर रखा गया, लेकिन पिछले कुछ दशकों में उनके लेखन और विचारों में लोगों की दिलचस्पी अभूतपूर्व तरीके से बढ़ी है। आज आप भारतीय राजनीति या समाज पर कोई भी गंभीर बहस करें तो अम्बेडकर उसके केंद्र में होते हैं।
और सिर्फ भारत में ही नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी सामाजिक न्याय की बात होती है, मानव अधिकारों की बात होती है,
अल्पसंख्यक अधिकार,
हाँ, अफर्मेटिव एक्शन यानी सकारात्मक कार्रवाई, इन सब बहसों में अम्बेडकर के विचार गूंजते हैं। दलित स्टडीज अब एक बड़ा अकादमिक क्षेत्र बन गया है।
और नवयान बौद्ध धर्म भी फैला है।
हाँ, उसका भी वैश्विक स्तर पर प्रसार हुआ है, खासकर उत्पीड़ित समुदायों के बीच।
उनके कुछ कथन तो इतने शक्तिशाली हैं, जैसे वो महिलाओं वाला।
हाँ, मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मापता हूँ। ये दिखाता है कि उनके लिए लैंगिक समानता कितनी कितनी बुनियादी चीज थी।
समाज की उन्नति का पैमाना थी वो।
हिंदू कोड बिल इसी सोच का नतीजा था।
और वो संघर्ष वाला कथन,
होए हुए अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, वे निरंतर संघर्ष से हासिल किए जाते हैं। ये उनके पूरे राजनीतिक दर्शन का निचोड़ है कि भाई उत्पीड़ितों को अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा, संगठित होना होगा, कोई थाली में रखकर देगा नहीं।
शिक्षा पर भी उनका बहुत जोर था।
बहुत ज्यादा। जीवन का अंतिम लक्ष्य मन का विकास होना चाहिए, कल्टिवेशन ऑफ माइंड। उनके लिए शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं थी, वो चेतना जगाने का, सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने का, आत्मसम्मान पाने का और सही मायनों में इंसान बनने का रास्ता थी।
उनका वो निजी पुस्तकालय राजगृह, 50,000 से ज्यादा किताबें।
हाँ, उस समय दुनिया के सबसे बड़े निजी संग्रहों में से एक। वो दिखाता है ज्ञान के प्रति उनकी कितनी प्यास थी।
लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनके विचारों की कोई आलोचना नहीं हुई, विवाद नहीं हुए?
नहीं, बिल्कुल हुए हैं और आज भी होते हैं। हिंदू धर्म और उसके ग्रंथों की उनकी जो तीखी आलोचना थी, उसके कारण कई लोग, खासकर हिंदू राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी विचारधारा के लोग, उन्हें परंपरा विरोधी मानते हैं, उनकी आलोचना करते हैं।
गांधी के साथ उनके मतभेद?
वो तो एक सतत बहस का मुद्दा है। आलोचक कहते हैं कि भाई आज़ादी की लड़ाई के वक्त पृथक निर्वाचन की मांग करना वो देश को बांटने जैसा था, जबकि उनके समर्थक मानते हैं कि वो दलितों जैसे कमजोर अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक अस्तित्व और सुरक्षा के लिए एकदम जरूरी था।
और द बुद्धा एंड हिज धम्म की व्याख्या पर भी सवाल उठते हैं।
हाँ, कुछ विद्वान उसे बौद्ध धर्म की पारंपरिक व्याख्या नहीं मानते, कहते हैं कि ये थोड़ी ज्यादा राजनीतिक और आधुनिकतावादी व्याख्या है।
ये सारी बहसें असल में यही दिखाती हैं कि उनके विचार आज भी कितने कितने जिंदा हैं, कितने प्रासंगिक हैं।
हाँ बिल्कुल।
कुछ और रोचक बातें भी तो हैं उनके बारे में, जैसे वो विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे?
जी हाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1927 में, और उन्होंने दलितों में शिक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए कई स्कूल कॉलेज खोले, अखबार निकाले,
जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत।
हाँ, वो जानते थे कि चेतना जगाए बिना, आवाज दिए बिना बदलाव नहीं आ सकता।
तो अंत में अगर हम सोचें कि अंबेडकर के जीवन और विचारों से हम क्या सीख सकते हैं, तो क्या कहेंगे?
मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि सच्चा लोकतंत्र वो सिर्फ चुनावों और संसदों से नहीं आता, वो समाज से आता है। जब तक समाज में बराबरी और भाईचारा नहीं होगा, लोकतंत्र अधूरा है।
शायद ये कि ज्ञान और शिक्षा वो सबसे बड़े हथियार हैं किसी भी तरह के दमन के खिलाफ। अंबेडकर का अपना जीवन इसका सबसे बड़ा सबूत है। कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी लगन और ज्ञान से न सिर्फ खुद को बदल सकता है,
बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है।
एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं।
जरूर।
कि आज के भारत में जहां जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता, ये सब चुनौतियां अभी भी हैं, वहां अंबेडकर के विचारों को, खासकर सामाजिक न्याय, बंधुत्व, संवैधानिक नैतिकता वाले विचारों को हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में कैसे उतार सकते हैं?
ये सिर्फ सोचने का नहीं बल्कि करने का सवाल है हम सबके लिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।